ॐ शांति ॐ शांति। आज हम सब के लिए बहुत ही विशेष दिन है। आज पूरे भारत के अंदर 79 स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और हम बच्चों के लिए स्वतंत्रता दिवस के लिए बाबा हमको डबल डबल बधाइयां देते हैं और स्वतंत्रता दिवस के लिए आप सबको भी बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा देश इतना ऊंच महान रहा, सारे विश्व के सामने जगत गुरु के रूप में, सारे विश्व के सामने आध्यात्मिकता के क्षेत्र में सबसे आगे रहा। इस देश ने दुनिया को क्या नहीं दिया है, बहुत कुछ दिया। भारत की संस्कृति, भारत का जो व्यवहार, भारतीय लोगों का ढंग, सेवा की प्रवृत्ति, जिससे हमारे देश का नाम पूरे विश्व में था। लेकिन मानव के अंदर यही संस्कार होता है कि जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसको लेने की कोशिश करते हैं और विदेशियों ने इसे बहुत कुछ लूटा, लेकिन भारतवासियों ने अपने दृढ़ संकल्प से देश को स्वतंत्र कराया। और साथ साथ बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं, तुम बच्चों को डबल स्वतंत्रता करनी है। एक है कर्म बंधन से अपने को मुक्त करना है और दूसरा अपने विचारों को इतना श्रेष्ठ बनाना है जो सदा लगे कि हम स्वतंत्र बाबा के लाडले बच्चे हैं। इसलिए बार बार आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई है, बधाई है। और मुरली क्लास के बाद सब भाई बहने बाहर ओम शांति भवन के बाहर सीढ़ियों पर एकत्रित होंगे और हमारे देश का झंडा लहराया जाएगा और साथ साथ शिव बाबा का झंडा तो हमें सदा ऊंचा रखना है, वह भी रहेगा। और एक बात और बता दें कि 15 अगस्त को माउंट आबू के स्कूल के बच्चे यहाँ ओम शांति भवन में आकर के बहुत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम रखते हैं। तो किन्हीं कारणों से पहले उनका और स्थान पर था, लेकिन आज जो प्रोग्राम बना है माउंट आबू के स्कूल के बच्चे यहाँ ओम शांति भवन में 1 बजे आएंगे, 1 से लेकर 6 बजे तक उनका कार्यक्रम रहता है, जिसके लिए आबू निवासी सेवाधारी और जो भी भाई सेवा में मदद करना चाहें, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, इधर उछलते हैं, इधर कुछ करते हैं, तो जो भी सेवा में मदद करना चाहे वो 1 बजे से पहले यहाँ ओम शांति भवन में आकर के पहुंचेंगे। और तीसरी बात, हमारी आदरणीय मोहिनी दीदी जी चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, उनका आज जन्म दिवस है, उनके निमित्त आज शाम को 6:30 बजे शांतिवन के डायमंड हॉल में कार्यक्रम रखा है। और पहले थोड़ा टाइम योग रहेगा, फिर योग के बाद कार्यक्रम रहेगा जिसमें मधुबन निवासी भाई बहनों को विशेष निमंत्रण है और बाकी जिनके पास गाड़ी का प्रबंध है वो अवश्य ही जा सकते हैं। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य, फिर से अनाउंसमेंट बाद में करेंगे। और अभी आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बार बार आत्म चिंतन, अपनी चेकिंग और हमें कौन सी चेकिंग करनी है उस पर ध्यान खिंचवाया है। बाबा ने कहा है कि बच्चों को मोहजीत भी बनना है, फिर बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही। बाबा ने कहा कि शिव बाबा खुद बोल रहे हैं कि मैं आत्मा का श्रृंगार करता, मुझे शरीर का श्रृंगार करना आता ही नहीं है। जिस तन का प्रवेश करता हूँ, जिस तन का लोन लेता हूँ, वो अपने शरीर का खुद ही श्रृंगार करता है, मैं नहीं करता हूँ, मैं केवल आत्माओं के श्रृंगार करता हूँ। तो इसलिए बच्चों को क्या करना है, ज्ञान रत्नों से अपने को भरपूर करना है। अभी हम सुनते हैं आज की मुरली। आज की डेट है 15 अगस्त 2025। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो, मैं छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ, मुझ आत्मा में अविनाशी पार्ट नूदा हुआ है। प्रश्न है, शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है और कौन सी नहीं? उत्तर तो पहले दे ही दिया है, आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है। आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है, बाकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उन्हें नहीं है। बाबा कहते मैं इसके लिए थोड़ी आया हूँ। तो बाबा कह रहे हैं, आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है, बाकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उन्हें नहीं है। क्योंकि बाबा कहते मुझे तो अपना शरीर है ही नहीं, मैं इनका शरीर भल किराए पर लेता हूँ, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार ये आत्मा स्वयं करती है, मैं नहीं करता हूँ, मैं सदा अशरीरी हूँ। आज का गीत है बदल जाए दुनिया, आगे बोलो ना बदलेंगे हम, फिर क्या बोलेंगे, बदल जाए दुनिया, माया कितने भी तूफान लाए लेकिन हम तूफानों में नहीं फंसेंगे, नहीं आएंगे। तो ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना, किसने सुना? आत्मा ने इस शरीर के कानों द्वारा सुना। बच्चों को ये मालूम पड़ा कि आत्मा कितनी छोटी है, वह आत्मा इस शरीर में नहीं है तो शरीर भी कोई काम का नहीं रहता। कितनी छोटी आत्मा के आधार पर ये कितना बड़ा शरीर, आत्मा छोटी शरीर तो देखो कितना बड़ा है। दुनिया में किसको भी पता नहीं कि आत्मा क्या चीज है। जो इस रथ पर विराजमान होती है, अकाल मूर्त आत्मा का ये तख्त है। बच्चों को भी ये ज्ञान मिलता है, कितना रमणीक रहस्य युक्त है बाबा का ज्ञान, इतना रहस्य युक्त है कोई दुनिया वाले इन बातों को समझ न सके। रहस्य भी बहुत है और बाबा ज्ञान की बातें इतना रमणीक तरीके से सुनाते हैं जो हर बात बुद्धि में बैठती है। जब कोई ऐसी रहस्यमय युक्त बात सुनी जाती है तो चिंतन चलता है। तुम बच्चों को भी यही चिंतन चलता है, इतनी छोटी सी आत्मा है इतने बड़े शरीर में, आत्मा में 84 जन्मों का पाठ मुंदा हुआ है, शरीर तो विनाश हो जाता है बाकी आत्मा रहती है। ये बड़ी विचार की बात है। आज बाबा ने मुरली के अंदर बहुत कई बार आत्मा के बारे में, आत्मचिंतन के बारे में भिन्न भिन्न पॉइंट्स बताई हैं। तो बाबा कहते हैं ये बड़ी विचार की बातें हैं, सवेरे उठकर ये ख्याल करना चाहिए। बच्चों को स्मृति आई है आत्मा कितनी छोटी है, उनको अविनाशी पाठ मिला हुआ है। फिर दूसरी बात, मैं आत्मा कितनी वंडरफुल, आत्मा कितनी छोटी है, अविनाशी पार्ट मिला हुआ है, 84 जन्मों का पार्ट है। और ये आज बात जो है ना, बाबा कह रहे ये कभी ध्यान में नहीं आता है ना, आज बाबा बता रहे मैं आत्मा कितनी वंडरफुल हूँ। ये नया ज्ञान है जो दुनिया में किसको भी नहीं है। बाप ही आकर बतलाते हैं, जो सिमरन करना होता है। हम कितनी छोटी सी आत्मा कैसे इतना बड़ा पार्ट बजाती हैं। शरीर 5 तत्वों का बनता है, बाबा को थोड़ी मालूम पड़ता है, ब्रह्मा बाबा को थोड़ी मालूम पड़ता है कब शिव आए कब चले गए। बाबा को थोड़ी मालूम पड़ता है कि शिव बाबा की आत्मा कैसे आती जाती। बाबा आ जाते हैं, जब बाबा कुछ बोलते इशारा करते तब लगता है कि बाबा आए हैं, नहीं तो बाबा कभी कभी ऐसे आकर के बैठ जाए पता भी ना पड़े। तो बाबा कहते हैं बाबा को थोड़ी मालूम पड़ता है कि शिव बाबा की आत्मा कैसे आती जाती है। ऐसे भी नहीं है कि सदैव स्तन में रहती है। तो यही चिंतन करना है। तुम बच्चों को बाप ऐसा ज्ञान देते हैं जो कभी कोई को मिल ना सके। तुम जानते हो बरोबर ये ज्ञान इनकी आत्मा में भी नहीं था, ब्रह्मा की आत्मा में भी ये ज्ञान नहीं था। शिव बाबा ने दिया तब तो मालूम पड़ा। और सत्संगों में ऐसी बातों पर कोई ख्याल ही नहीं रहता है। आत्मा और परमात्मा का रिंचक भी ज्ञान नहीं है। कोई भी साधु संत आदि ये थोड़ी समझते हैं कि हम आत्मा इस शरीर द्वारा इनको मंत्र देते हैं, लेकिन ये थोड़ी समझती रहती है कि मैं आत्मा शरीर द्वारा मंत्र, उनको है कि मंत्र दे रहे हैं। बाबा कहते कोई भी साधु संत आदि ये थोड़ी समझते कि हम आत्मा इस शरीर द्वारा इनको मंत्र देते हैं। आत्मा ही शरीर द्वारा शास्त्र पढ़ती है। एक भी मनुष्य मात्र आत्म अभिमानी नहीं है। आत्मा का ज्ञान कोई को है नहीं, तो फिर बाप का ज्ञान कैसे होगा। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों। आज पक्का करना है, बाबा क्या बता रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों। तुम कितना समझदार बन रहे हो, बन गए ना सब। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो समझे कि इस शरीर में जो आत्मा है उनको परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं, परंतु फिर भी धंधे आदि में जाने से भूल जाते। भट्टी वाले आए ना यहाँ बाबा के घर में, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करते, फिर घर में जाते हैं कई बातों में उलझ जाते हैं। तो बाबा ने आज पक्का करा रहे हैं कि घर में जाना है, सब कुछ करना है, बाबा को नहीं भूलना है ना। पहले तो बाप आत्मा का ज्ञान देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र को नहीं है। गायन भी है ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, हिसाब है ना। तुम बच्चे जानते हो कि आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा, आत्मा ही शरीर द्वारा अच्छे व बुरे काम करती है। बाप आकर के आत्माओं को कितना गुल गुल बनाते। बाबा आते हैं ज्ञान की बहुत सुंदर सुंदर बातों से गुल गुल बना देते हैं। साकार में भी बाबा क्या करते थे, मुरली क्लास में आने से पहले बगीचे में जाते थे, सुंदर सुंदर फूलों को लेके आते थे और बाबा उन फूलों को देख करके कहते थे ये सब मेरे गुलगुल फूल बच्चे यहाँ बैठे हैं। आत्मा ही शरीर द्वारा अच्छे व बुरे कर्म करती है। बाप आकर आत्माओं को कितना गुलगुल बनाते हैं, तो पहले पहले बाप कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर यही प्रैक्टिस या ख्याल करो कि आत्मा क्या है। आत्मचिंतन करने के लिए बाबा बता रहे हैं, तो बाबा बता रहे हैं जो इस शरीर द्वारा सुनती है, आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है, जिसको ही पतित पावन ज्ञान का सागर कहा जाता है। फिर कोई मनुष्य को सुख का सागर या शांति का सागर कैसे कह सकते? क्या लक्ष्मी नारायण को कहेंगे कि वे सदैव पवित्रता का सागर है? पवित्रता का सागर बाबा है, लेकिन पवित्र कंप्लीट पवित्र बनते हैं? नहीं, एक बाप ही सदैव पवित्रता का सागर है। मनुष्य तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्रों का बैठ वर्णन करते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। ऐसे नहीं समझेंगे कि हम आत्मा इस शरीर से बाप की महिमा करते हैं। वह हमारा बहुत मीठा मीठा बाबा, दुनिया में कभी कोई ऐसे याद नहीं करते कि भगवान हमारा मीठा बाप है। वह हमारा बहुत मीठा बाबा है, वही सुख देने वाला है। बाप कहते हैं हे आत्माएं अब मेरी मत पर चलो। ये अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी मत मिलती है। ये विनाशी शरीरधारियों को विनाशी शरीरधारियों द्वारा ही मत मिलती है। सत्युग में तो तुम यहाँ की ही प्रालब्ध पाते हो, वहाँ कभी उल्टी मत मिलती नहीं, वहाँ ऐसी कोई मत की जरूरत ही नहीं है। तो बाबा कहते वहाँ है ही नहीं जो आपको चाहिए, वहाँ कभी उल्टी मत मिलती ही नहीं है। अभी की श्रीमत ही अविनाशी बन जाती है, जो आधा कल्प चलती है। ये नया ज्ञान है, कितनी बुद्धि चाहिए इसको ग्रहण करने के, ज्ञान को समझने के लिए और ग्रहण करने के लिए बुद्धि भी चाहिए। लेकिन साथ साथ बाबा हमेशा ध्यान खिंचवाते बुद्धि क्लीन और स्वच्छ भी चाहिए और एक्ट में आना चाहिए। जिन्होंने शुरू से भक्ति की होगी उनकी निशानी क्या होगी बताओ भट्टी वाले, क्या होगी निशानी? जिन्होंने शुरू से भक्ति की बताओ माताएं, उनको ज्ञान की धारणा अच्छी होगी, जल्दी समझेंगे। बाबा कहते हैं जिन्होंने शुरू से भक्ति की होगी वह अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। ये समझना चाहिए अगर हमारी बुद्धि में ठीक रीति से धारणा नहीं होती तो जरूर शुरू से हमने भक्ति नहीं की। जिन्होंने बहुत भक्ति की हाथ खड़ा करो, ये तो माताएं तो सब बहुत किया है इस जन्म में। जिन्होंने इस जन्म में भी किया हो तो समझ लो कि पूर्व जन्म में भी उन्होंने बहुत की है। बाप कहते हैं कुछ नहीं समझते हो तो बाप से पूछो, क्योंकि बाप है अविनाशी सर्जन, उनको सुप्रीम सोल भी कहा जाता है। आत्मा पवित्र होती है तो उनकी महिमा होती है। आत्मा की ही महिमा है, शरीर की महिमा नहीं होती है। आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर की भी महिमा नहीं। इस समय तुम बच्चों को बहुत गहर बातें और गहर बुद्धि मिलती है, आत्मा को ही मिलती है। फिर आत्मा को क्या करना है, आत्मा को कितना मीठा बनना चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। बाबा कितना मीठा है बताओ, कितना मीठा है? दादी जानकी हमेशा के बाबा इतना मीठा, इतना मीठा, दिल करता है कि कि मैं मीठे को क्या करूं, अपने अंदर संभालू है। तो बाबा कहते हैं, बाबा है आत्मा को भी मीठा बनाते हैं। आत्मा को कितना मीठा बनना चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। बाबा कितना मीठा है, तो बाबा कहते हैं आत्मा को भी बहुत मीठा बनाते हैं। आत्मा कोई भी अकर्तव्य कार्य ना करे, ये प्रैक्टिस करनी। आज क्या क्या प्रैक्टिस करनी है, क्या चेक करना है, ये चेक करना है कि मेरे से कोई अकर्तव्य कार्य तो नहीं होता है। शिव बाबा कभी अकर्तव्य कार्य करेंगे क्या? बाबा कहते शिव बाबा ने कभी किया ऐसा? ब्रह्मा बाबा ने भी कभी नहीं किया। शिव बाबा कभी कोई अकर्तव्य कार्य करेंगे क्या? नहीं, वे आते ही हैं उत्तम से उत्तम कल्याणकारी कार्य करने के लिए, सबको सदगति देते हैं। तो जो बाप कर्तव्य करते हैं तो बच्चों का भी ऐसा कर्तव्य करना है, ये भी समझाया है जिन्होंने शुरू से लेकर। बाबा कहते बाप जो कर्तव्य करते हैं तो बच्चों को भी ऐसा कर्तव्य करना है, ये भी समझाया है कि जिन्होंने शुरू से लेकर भक्ति की है, ये भी समझाया है जिन्होंने शुरू से लेकर भक्ति की है उनकी बुद्धि में ये ज्ञान ठहरेगा। अभी भी देवताओं के ढेर भगत हैं, देवताओं के पास जाते हैं, क्या क्या कुर्बानी करते हैं, अपना सिर देने के लिए तैयार रहते हैं, कुर्बानी के लिए कितना तैयार रहते हैं। बहुत भक्ति करने वालों के पिछाड़े कम भक्ति करने वाले लटकते रहते हैं, उनकी महिमा गाते हैं, उनको स्थूल में सब देखने में आता है। तुम यहाँ हो गुप्त, भक्ति मार्ग में जो भी करते हैं हर चीज दिखाई देती है, और यहाँ बच्चे जो गुप्त पुरुषार्थ करते हैं तो बाबा कहते तुम हो गुप्त, यहाँ तुम गुप्त हो, तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, ये भी बच्चों को मालूम है। बाबा किस लिए आए हैं बताओ, बाबा किस लिए आए? बाबा कहते हैं बाबा, बच्चे कहते बाबा, बाबा हमको ही पढ़ाने आए, बाहर वालों को नहीं, ये नशा होना चाहिए। तो बाबा किसको पढ़ाते? अपने बच्चों को पढ़ाते ना। ये तुम बच्चों को मालूम है कि बाबा हमको पढ़ाने आए हैं। अब फिर हम घर जाएंगे जहाँ सब आत्माएं रहती हैं, वह हमारा घर है, वहाँ शरीर ही नहीं है तो आवाज कैसे हो? शरीर नहीं है जिससे कार्य करते वो ही नहीं है तो वहाँ पर तो आवाज ही नहीं होती है, वहाँ शरीर ही नहीं है तो फिर आवाज कैसे हो? आत्मा के बिना शरीर जड़ बन जाता है। मनुष्यों का शरीर में कितना मोह रहता है, आत्मा शरीर से निकल गई तो बाकी पांच तत्व उन पर भी कितना लव रहता है, इतना शरीर से मोह हो जाता है, छोड़ते नहीं है ना। तो स्त्री पति की चिता पर चढ़ने के लिए भी तैयार हो जाती है, ये भी बाबा कहते एक मोह की निशानी है, कितना वो शरीर के पीछे क्या क्या कर देती है। स्त्री भी पति की चिता पर चलने के लिए तैयार हो जाती है, कितना मोह रहता है शरीर में। अभी तुम समझते हो नष्टो मोह बनना है सारी दुनिया से, एक है नष्टो मोह वैसे बनना, और दूसरा बाबा कहते हैं सारी दुनिया से, ये शरीर तो खत्म होना है तो उनसे मोह निकल जाना चाहिए, परंतु बहुत मोह रहता है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, याद करते हैं ना, फलाने का श्राद्ध है, अब वे थोड़ी खा सकते श्राद्धों के दिन में, भक्ति मार्ग में ब्राह्मणों को बुलाते हैं, उनको खिलाते हैं, उनके वाइब्रेशन भले उस आत्मा तक पहुंचे, वो आत्मा थोड़ी खाती, खाता तो ब्राह्मण ही है ना। अब वह थोड़ी खा सकता है, तुम बच्चों को तो अब इन बातों से अलग हो जाना चाहिए। ड्रामा में हर एक आत्मा का अपना पार्ट है। इस समय तुमको ज्ञान है, हमको नष्टो मोह बनना है। मोहजीत राजा की भी कहानी है ना, और कोई मोहजीत राजा होता ही नहीं है। कौन है मोहजीत राजा बोलो, हम बच्चे हैं, और कोई होता ही नहीं है, और कोई मोहजीत राजा होता ही नहीं है। ये तो बहुत कथाएं बना दी हैं, वहां अकाल्य मृत्यु होती नहीं, सतयुग में अकाल्य मृत्यु होती नहीं, तो पूछने की तो बात ही नहीं रहती, क्यों शरीर छोड़ा, ये क्या हुआ। और उसके शरीर छोड़ने का टाइम आता है तो सब खुशी खुशी उसको विदाई देते हैं। इस समय तुमको मोह जीत बना दे। हमें याद है पहले जमाने के अंदर कोई व्यक्ति अपनी आयु पूरी करके जाता था, उसके जाने पर खूब ढोल तमाशे बजाते थे, खूब पैसे उसके ऊपर चढ़ाते थे, वो इस बात में कि वो अपनी आयु को पूरा करके गया है। अभी तो मोह रहता है, तो सतयुग में तो मोह की बात ही नहीं है। स्वर्ग में मोहजीत राजाएं थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा ऐसे हैं, वह है ही नष्टो मोहा की राजधानी। सतयुग का नाम बाबा ने क्या दिया, नष्टो मोहा की राजधानी। रावण राज्य में मोह होता है, वहां तो विकार होता ही नहीं है, रावण राज्य ही नहीं है, रावण की राजाई तो चली जाती है, सचयुग में रावण है ही नहीं। राम राज्य में क्या होता है ये भी कुछ पर भी पता नहीं, सिवाय बाप के और कोई ये बातें बता न सके। बाप इस शरीर में होते भी देही अभिमानी। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं, बैठते हैं, बच्चों से मिलते हैं, लेकिन शिव बाबा भी बच्चों से मिलते हुए भी देही अभिमानी है। बाप इस शरीर में होते हुए भी देही अभिमानी है। लोन अथवा किराए का मकान लेते हैं तो उसमें मोह रहता है। बाबा बाहर वालों की बात बता, कोई किराए का मकान लेता है उसमें मोह रहता है, उसको खूब सजाएंगे, बहुत कुछ ध्यान रखेंगे। लोन अथवा किराए का मकान लेते हैं तो उसमें मोह रहता है। मकान को अच्छी रीति फर्निश करते हैं, इनको तो फर्निश करना ही नहीं, किसको, शिव बाबा को तो, ब्रह्मा बाबा के तन को फर्निश करना ही नहीं। ब्रह्मा बाबा अपने तन की आप ही संभाल करें, शिव बाबा के तो मैं क्यों करूं, मैं नहीं करता हूं। इनको तो इनके शरीर का फर्निश करना ही नहीं है, क्योंकि बाप तो अशरीरी है ना, इनको तो इनको कोई भी श्रृंगार आदि करने की प्रैक्टिस नहीं, किसको, शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा छोड़ो, बाबा कहते शिव बाबा को श्रृंगार आदि करने की कोई भी प्रैक्टिस नहीं है। इनको तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से बच्चों का श्रृंगार करना है। इनको जब दूसरा नया शरीर मिलेगा तो बाबा कहते हैं इनको तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से बच्चों का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस है। शिव बाबा कहते हैं मैं शरीर का श्रृंगार नहीं करता, मैं अविनाशी ज्ञान रत्नों से बच्चों की आत्मा का श्रृंगार करता हूँ। इनको तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से बच्चों का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। शरीर तो अपवित्र है ही, इनको जब दूसरा नया शरीर मिलेगा तो पवित्र होंगे। शिव बाबा बता रहे हैं कि अभी मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ तो वो है तो अपवित्र ना, लेकिन जब नया शरीर मिलेगा तब पवित्र होगा। इस समय ये पुरानी दुनिया है, ये खत्म हो जानी है। ये दुनिया में किसको भी पता नहीं है कि दुनिया खत्म होनी है, ये भी नहीं जानते हैं। धीरे धीरे मालूम पड़ेगा नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश, ये तो बाप का ही काम है। बाप ही आकर ब्रह्मा द्वारा प्रजा रच नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तुम नई दुनिया में हो, अभी नई दुनिया में हो या जाना है? जाना है ना, तो अभी नहीं हो। बाबा कहते हैं तुम नई दुनिया में हो, नहीं, नई दुनिया की स्थापना होती है तो ब्राह्मणों की चोटी भी ऊंच है। बाबा ने समझाया है, बाबा के सम्मुख आते पहले ये याद करना, क्या याद करना है? बाबा के घर में आकर के क्या याद करना है कि हम ईश्वर बाप के सम्मुख जाते। यहाँ आते हैं भट्टी में, क्या लक्षण होता है? अपने घर बाबा के घर जा रहे हैं कि हम ईश्वर बाप के सम्मुख जाते हैं। शिव बाबा तो निराकार है, उनके सम्मुख हम कैसे जाएं? जाना है बाबा के पास, लेकिन कैसे जाएं? तो उस बाप को याद कर फिर बाप के सम्मुख आना है। ये राज है कि जब ब्रह्मा बाबा से मिलने आते थे तो शिव बाबा हमेशा प्रैक्टिस कराते थे, ब्रह्मा बाबा से मिलने के टाइम भी ये पक्का रहे कि हम किससे मिलने आए। हम शिव बाबा को याद कर बाप से मिलते हैं तो ये प्रैक्टिस करनी है। तुम जानते हो ना, ये इनमें बैठा है, कौन? शिव बाबा ब्रह्मातन में बैठा हुआ है। ये शरीर तो पतित है, शिव बाबा की याद में ना रहे कोई काम करते हो तो पाप लग जाता है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में दूसरे संबंधी आदि होंगे, वहां देवताओं की गोद में जाएंगे। यहाँ आते शिव बाबा के पास और सतयुग में जाएंगे, देवताओं की गोद में जाएंगे। ये ईश्वरी गोद एक ही बार मिलती है। बाबा के पास आते थे, हर एक के सामने बैठते थे, ईश्वरी गोद की अनुभूति होती थी, तो बाबा कहते हैं ये ईश्वरी गोद एक ही बार मिलती है। मुख से कहते हैं बाबा हम आपके हो चुके। अब जो बाबा के हो चुके हाथ खड़ा करो, पक्का? ऐसे नहीं आज कहो ठीक है कल कहने हैं। मुख से कहते हैं बाबा हम आपके हो चुके, बहुत हैं जिन्होंने कभी देखा भी नहीं, बाहर में रहते हैं। लिखते हैं शिव बाबा हम आपकी गोद में जाएंगे। ये जिन्होंने कभी देखा नहीं बाहर में रहते हैं, लिखते हैं शिव बाबा हम आपकी गोद के बच्चे हो चुके। हम बाबा के एडॉप्टेड बच्चे, शिव बाबा के गोद के बच्चे हो चुके हैं। बुद्धि में ज्ञान है, आत्मा कहती है हम शिव बाबा के बन चुके हैं। इनके पहले हम पतित के गोद में थे, पतित मनुष्यों के साथ कनेक्शन, तो पतित की गोद में थे। भविष्य में पवित्र देवता की गोद में जाएंगे। ये जन्म दुर्लभ है, कौन सा? ईश्वरीय जन्म, ब्राह्मण जन्म, ये बहुत ही दुर्लभ है। हीरे जैसा तुम यहाँ संगम युग पर बनते हो। संगम युग कोई उस पानी के सागर या नदियों को नहीं कहा जाता है, रात दिन का फर्क है। ब्रह्मपुत्र बड़े से बड़ी नदी है जो जाकर के सागर में मिलती है। कलकत्ता में है ब्रह्मपुत्र नदी, जाकर के फिर सागर में मिलती है। नदियां जाकर के सागर में पड़ती हैं। तुम भी सागर से निकली हुई कौन हो? ज्ञान नदियां, ज्ञान सागर शिव बाबा है। बड़ी से बड़ी नदी कौन सी है बताओ? है बड़े से बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा है। इनका नाम ब्रह्मा है, सागर सिंह का कितना मेल है। सबसे नजदीक जो है ब्रह्मा बाबा है, ब्रह्मा बाबा को सदा नशा रहता था कि शिव बाबा जो सुनाते हैं ना, पहला नंबर मैं सुनता हूँ। तो वो बाबा ही पहले सुनते थे। वैसे भी हम देखते हैं जब ट्रांसलेशन होता है ना, एक सेकंड का अंतर होता है। अब जो शिव बाबा सुनाते हैं तो ब्रह्मा बाबा पहले सुनते हैं। तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी सागर से कैसे मिली हुई है, ये भी एक बहुत बड़ा भाग्य है। सागर से मीठा पानी खींचते हैं सागर के बच्चे, फिर जाकर सागर में मिलते हैं। तुम भी ज्ञान सागर से निकले हो, फिर वहां चली जाएंगे। आत्मा जो खारी बन गई है उसको मीठा बनाते हैं। पांच विकार रूपी छीछी, आज बाबा ने क्या नाम दिया, पांच विकार रूपी छीछी नमकीन, तुम उससे निकल जाते। नमक तेज होगा कितना खराब लगता है ना। तो बाबा कहते हैं पांच विकारों रूपी छीछी नमकीन तुमसे निकल जाती है, तो तुम सतो तमो प्रधान से, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप पुरुषार्थ बहुत कराते हैं, तुम कितने सतो प्रधान थे, स्वर्ग में रहते थे, तुम बिल्कुल छीछी बन गए हो। रावण ने तुमको क्या बना दिया। बाबा रियलाइज कराते, देखो क्या हालत हो गई। भारत में ही गाया जाता है हीरे जैसा अमोलक जन्म। बाबा कहते रहते हैं, अब कौन सी बात है ध्यान से सुनना है, बाबा कहते रहते हैं तुम कोड़ियों पिछाड़ी क्यों हैरान होते। होता ना, ये भी कमाए, कई बार लालच रहती, जो पिछाड़ी हैरान होते ना वो बहुत अच्छी पॉइंट देते हैं, कहते हम कमाएंगे ना तो यज्ञ में लगाएं। जैसे वो कमाने लगते हैं बुद्धि कहाँ से कहाँ चली जाती है, जो थोड़ा बहुत अपना भाग्य बनाते वो भाग्य भी पूरा कर देते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहते रहते हैं तुम कोड़ियों पिछाड़ी क्यों हैरान होते हो। कोड़ियां भी जास्ती थोड़ी चाहिए, कितना चाहिए, अपने आप को चलाने के लिए जितना चाहिए वो तो मिल ही रहा है। गरीब झट समझ जाते हैं, साहूकार तो कहते हैं अभी हमारे लिए स्वर्ग यहाँ है, तुम बच्चे जानते हो। तुम बच्चे जानते हो जो भी मनुष्य मात्र हैं, इन सब का इस समय कोड़ी जैसा जन्म है। हम भी तो ऐसे ही थे, अभी बाबा हमको क्या बनाते हैं। एम एन ऑब्जेक्ट है ना, हम नर से नारन बनते हैं। भारत अब कोड़ी जैसा कंगाल हो गया है, भारतवासी खुद भी नहीं जान। भारत की हालत ये हो गई थी बीच में, अभी फिर से भारत तो बहुत ऊंचा जा रहा है, पूरे विश्व के अंदर उसकी जो प्रगति उसको सारा विश्व देख भी रहा है। तो बाबा कहते हैं भारतवासी खुद थोड़ी जानते हैं, यहाँ तुम कितने साधारण अबलाए हो। कोई बड़ा आदमी होगा तो उनको यहाँ बैठने की दिल नहीं होगी। होता था बड़ा आदमी आएगा, सब साधारण लोग बैठे हैं, कहेंगे मैं तो इतना बड़ा हूँ मैं यहाँ कैसे बैठूं। अभी तो वो लोग आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आते हैं, बैठते भी हैं। जहाँ बड़े बड़े आदमी सन्यासी गुरु आदि लोग होंगे वहाँ की बड़ी बड़ी सभाओं में जाएंगे। बाप भी कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ, कहते हैं भगवान गरीबों की रक्षा करते, भक्ति में गाए ना कि भगवान गरीबों की रक्षा करते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितने साहूकार थे, अभी फिर बनते हैं। बाबा लिखते भी हैं तुम क्या बनते हो, बताओ क्या बनते हो, पद्मपति बनते हो। बाबा को थैंक्स दो, बाबा को बोलो बाबा आप हमें क्या से क्या बनाते, ताली बजा करके बाबा को थैंक्स दो। बाबा कहते हैं अभी तुम कितने पद्मपति बनते हो, वहां पर तो मारा मारी होती नहीं है, यहाँ तो देखो पैसे के पीछे कितनी मारा मारी है, रिश्वत कितनी मिलती है, पैसे तो मनुष्य को चाहिए ना, तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा खजाना भरपूर कर देते हैं, आधा क्लब के लिए जितना धन चाहिए जितना चाहिए, बाबा की तो ले लो, आधा क्लब के लिए जितना धन चाहिए उतना धन लो, परंतु पुरुषार्थ भी तो पूरा करो, धन ऐसे थोड़ी मिलेगा, पुरुषार्थ करेंगे तब तो मिलेगा ना, गफलत नहीं करो, गाया जाता है ना फॉलो फादर, फादर को फॉलो करो तो ये जाकर बनेंगे नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, बड़ा भारी इम्तिहान है, इसमें जरा भी गफलत नहीं करनी चाहिए, बाप श्रीमत देती हैं तो फिर उस पर चलना है, कायदे कानून का उल्लंघन नहीं करना, कायदे कानून का उल्लंघन नहीं करना है, श्रीमत से ही तुम श्री बनते हो, मंजिल बहुत बड़ी है, अपना रोज का खाता रखो, रोज का चार्ट चेक करो, अपना रोज का खाता रखो, कमाई की या नुकसान किया, चार्ट में क्या कमाई की या नुकसान किया, बाप को कितना याद किया, कितनों को रास्ता बताया, अंधों की लाठी तुम हो ना, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, अच्छा मीठे मीठे सिक्की लादे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार, पहला जैसे बाप मीठा है ऐसे मीठा बन सबको सुख देना है, कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना है, उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है, दूसरा कोड़ियों की पिछाड़ी हैरान नहीं होना है, पुरुषार्थ कर अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है, गफलत नहीं करनी है, वरदान निश्चय रूपी पांव को अचल रखने वाले सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत भाव, निश्चय रूपी पांव को अचल रखने वाले सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत भाव, सबसे बड़ी बीमारी है कौन सी, चिंता, कई तो बहुत सोचते रहते तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ी बीमारी है चिंता, इसकी दवाई डॉक्टर्स के पास भी नहीं है, वो 10 दवा देगा कुछ भी काम नहीं करेगी, चिंता वाले जितनी भी प्राप्ति के पीछे दौड़ते हैं उतना प्राप्ति उनके आगे दौड़ती है, उनके हाथ में नहीं आएगी भाग जाएगी, उनकी प्राप्ति आगे दौड़ लगाती है, इसलिए निश्चय के पांव सदा अचल रहे, सदा एक बल एक भरोसा ये पांव अचल है, तो विजय तो निश्चित है, सदा एक बल एक भरोसा ये पांव अचल है तो विजय निश्चित है ही, निश्चित विजयी सदा ही निश्चिंत है, माया निश्चय रूपी पांव को हिलाने के लिए भिन्न भिन्न रूप से आती है, लेकिन माया हिल जाए आपका निश्चय रूपी पांव न हिले तो निश्चिंत रहने का वरदान मिल जाएगा। स्लोगन, हर एक की विशेषता को देखते जाओ तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। अब व्यक्ति शारा का जो हेडिंग है, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। आप गोप गोपियों के चरित्र गाए हुए हैं, बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना और मगन रहना अथवा सर्व संबंधों के लव में लवलीन रहना। जब कोई अति स्नेह से मिलते हैं तो उस समय स्नेह के मिलन के यही शब्द होते हैं कि एक दूसरे में समा गए या दोनों मिलकर एक हो गए। तो बाप के स्नेह में समा गए अर्थात बाप का स्वरूप हो गया। अभी हम सुनेंगे आदरणीय दादी जी की विशेषता। दादी जी का महीना चल रहा है, आज है 15 तारीख। शुभ भावना द्वारा संगठन को एक सूत्र में पिरोने की शक्ति। शुभ भावना द्वारा संगठन को एक सूत्र में पिरोने की शक्ति। दादी जी ने शुभ भावना द्वारा पूरे संगठन को एक सूत्र में पिरोया। संगठन में चलने की विधि सिखाई। दादी जी कहती संगठन में भाव स्वभाव तो होंगे, जहाँ संगठन होता है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन संगठन में मजबूत भी बनते और सीखते भी हैं। कई बार आपस में विचार नहीं मिलते, लेकिन लक्ष्य रखो कि मुझे हर एक की अच्छाई को देखना है। अच्छाई देखकर बात करो, अच्छाई देखेंगे तो बुराई आप ही खत्म हो जाएगी। सबके प्रति शुभ भावना रखो तो शुभ कामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। कोई आपकी बात नहीं मानता है तो आप उसे छोड़ दो, उसके पीछे नहीं लगो, छोड़ दो, आप उसे छोड़ दो। समय पर ही वह आप पे ही ठंडा हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। सभी भाई बहने 5 मिनट के लिए बैठे रहेंगे। एक नन्ही सी बालिका देशभक्ति पर एक डांस करेगी, उसके बाद सभी भाई बहने शांति स्तंभ के सभी भाई बहने ओम शांति भवन के बाहर सीढ़ियों पर खड़े होंगे। झंडारोहण का कार्यक्रम रहेगा। अच्छा, जैसे कि बट्टी की टीचर्स बहनों को कल बताया था। हाँ।